ओम शांति। स्वागत है शिरु बहन का हमारी क्लास में। आज का विषय है निराकारी निर्विकारी आगे निरंकारी स्थिति, मतलब कैसे बनाए। ठीक है, बाबा ने अंत में यही महावाक्य उच्चारण किए थे, पता है ना सभी को। साकार बाबा ने ऐसे ही अंत में मुरली के पश्चात जाते जाते कहा था। तो वो स्थिति बाबा ने कैसे बनाई अपनी और हम कैसे बनाए ना? तो आज के विषय में हम ये सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति। बाबा के ज्ञान में कितनी बातें हैं जो बाबा तीन 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 कहते हैं, वो भी एक लिस्ट निकल सकती है। लेकिन आज कौन सी तीन बातें हम सुनेंगे? निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। तो बाबा हम बच्चों को ये पाठ वैसे देखा जाए तो शुरू से ही पढ़ाना शुरू किया, तो ये आदि का पाठ भी है तो साथ साथ अंत का पाठ भी है। आत्मा का पाठ तो बाबा ने शुरू से ही बता दिया ना। ब्रह्मा बाबा ने यज्ञ के आरंभ में ये पाठ कितना पक्का किया, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, और दूसरों को भी पक्का कराया। बाबा की लौकिक में युगल थी यशोदा बहन, बाबा ने उनको भी पक्का कराया और दीवारों पर लिखते थे यशोदा आत्मा है यशोदा आत्मा है, ताकि वो जो देह भान आता है ना संबंधों का, ये भी देह भान है, देह अभिमान कहो, तो ये संबंध जो देह के हैं वो याद न आए और आत्मा देखे, तो बाबा ने दीवारों पर लिखा यशोदा आत्मा है यशोदा आत्मा है। और यशोदा भी पढ़े कि मैं आत्मा हूं, और बाबा को भी उसी दृष्टि से देखे। फिर बाबा लिखते थे राधिका आत्मा है राधिका आत्मा है, बाबा की लौकिक बहू। बाबा का उनमें बहुत मोह था क्योंकि बहुत सुंदर भी थी, और बाबा उनको अक्सर करके राजाओं महाराजाओं के पास सजा धजा कर ले जाते थे, ताकि जो महारानियां होती थी वो बाबा की बहू ब्रजिंद्रा दादी जो महाराष्ट्र की हेड थी, अपने युवा काल में तो बहुत सुंदर थी, तो बाबा उनको खूब गहने पहना करके ले जाते थे, और वो रानियां ब्रजिंद्रा दादी उनकी बहू राधी राधी का नाम था, राधिका आत्मा है बाबा कहते थे। लेकिन बहुत मोह था बाबा का क्योंकि बहुत उनके द्वारा सेवा होती थी, तो वो जब रानिया बाबा राधिका के शरीर पर गहने देखती थी तो बहुत आकर्षित होती थी और कहती थी बस यही हार चाहिए, ऐसे ही कंगन चाहिए, ऐसे ही कान के वो चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसे ही अंगूठी चाहिए। तो बाबा भी बहुत होशियार होते थे, वो एक सेट लेकर ही जाते थे ताकि अगर वो कहे तो पहले से ही दे दे, या मान लीजिए दूसरा सेट नहीं भी होता था तो बाबा हल्के से बहू को कहते थे बेटी, ये बेटी कहते थे, ये जो पहना है ना ये उतार के दो, अब इनको दे देंगे फिर आपको हम और अच्छे नए बना के देंगे। वो तो फटाफट उतार के दे देती थी, तो बाबा की बिक्री भी बहुत अच्छी हो जाती थी। लेकिन जब बाबा को ज्ञान मिला तो कैसे सारी दृष्टि बदल गई, दैहिक नाते बदल गए। तो वो आत्मिक स्थिति बनाने लिए सबको मेहनत तो करनी पड़ी ना, क्योंकि सारे संबंध बदल गए। मम्मा की लौकिक माँ अपनी बेटी को मम्मा कहने लगी, अभी माँ अपनी बेटी को माँ कहे और बेटी अपनी माँ को बेटी कहे, हाँ तो संबंध बदल गया ना। ब्रह्मा बाबा की लौकिक पत्नी यशोदा, बाबा उनको बच्ची कहे और वो बाबा को बाबा कहे, तो देखो इतना बदल गया। तो ये आत्मा का पाठ बाबा ने शुरू से पढ़ाया और बाबा कहते ये अंत तक चलेगा, अंत में भी बस यही मुख्य है। इसलिए बाबा कहते ना, कई बच्चे कहते हैं बाबा मुरली में वही बात तो कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, हम करते हैं, लेकिन यही मुख्य बात है और अभी तक वो स्थिति बनी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा कहते रहेंगे जब तक वो स्थिति बने। तो जब निराकारी बात स्थिति कहते हैं तो निराकारी में तीन बातें आती है। सबसे पहली बात है देही अभिमानी स्थिति। निराकारी स्थिति का मतलब ऐसे नहीं केवल परम धाम में आत्मा शरीर से अलग हो गई, बस वो निराकारी अवस्था है निराकारी दुनिया में। लेकिन यहाँ साकार में होते हुए भी ऐसी देही अभिमानी स्थिति रहे जो सबको आत्मा देखे। तो बाबा कई बार कहते किसको भी देखो आत्मा कैसे देखो, उसके मस्तक पर चमक रहा है सितारा, उस मस्तक से नीचे मत देखो क्योंकि माया आ जाएगी। हाँ मस्तक से नीचे फिर अंतर दिखाई पड़ेगा, मस्तक से नीचे आंखें हैं, इसकी आंखें कैसी है, हाँ फिर इसके पीछे नाक है, इसका नाक कितना मोटा है, इसका नाक पतला है, इसकी आंखें बिल्ली जैसी है, इसकी आंखें कैसी है, चपटी है, ये है फलाना। फिर और नीचे आओ तो ये होठ, हाँ किसके मोटे मोटे बहुत होती हूँ होठ होते हैं, तो उस पर नजर गई। फिर और नीचे आओ तो सतो से रजो, रजो से तमो, ये स्थिति बनती जाती है। तो बाबा कहते कहीं भी नहीं देखो, कहाँ देखो सबको, आत्मा को भ्रकुटी पर देखो, ये सबका समान है। हाँ ये समतल है ना, फ्लैट है। यहाँ पर कोई कई बार यहाँ किसी का वो कुछ निकल आता है जैसे बॉइल, तो कहते इनकी आत्मा निकल आई है ऐसे। तो बाबा कहते हैं तो बस आत्मा रूप में देखो। रोज सवेरे उठते हैं, नहा धो के माताएं तिलक लगाती है, तो सबसे पहले तिलक जब लगाते हैं तो देखते हैं मैं आत्मा हूँ, ये तिलक ये अकाल तख्त है मेरा। तो अगर ये हमारा भान होगा तो ये देही अभिमानी स्थिति है, क्योंकि तीन स्थितियां हैं, एक देही अभिमानी स्थिति, दूसरी अव्यक्त स्थिति जिसको अव्यक्त से पहले विदेह स्थिति, अव्यक्त तो निराकारी स्थिति से आगे पहले आएगी। तो पहले देही अभिमानी स्थिति, फिर विदेही स्थिति, फिर उसके बाद अव्यक्त स्थिति, फिर बीज रूप जिसको निराकारी स्थिति कहेंगे। तो बाप पहले देही अभिमानी, तो देही अभिमानी स्थिति माना चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते, ये देही अभिमानी स्थिति बनानी है। क्योंकि मैं आत्मा, बाबा कहते शरीर द्वारा कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ, या और फिर और ऊंचा करवा रही हूँ। मैं ये इंद्रियां कर रही है और मैं करवा रही हूँ, मैं आत्मा, या तो मैं आत्मा निमित्त हूँ और इस शरीर की इंद्रियों द्वारा कर रही हूँ। तो मानो ये देही अभिमानी स्थिति चलते फिरते हमें बनानी है, क्योंकि ये बहुत काम आएगी अंत में बताएंगे। और जैसे ये स्थिति बनती है, दूसरों को हम आत्मा रूप में देखते हैं, तो ये उसके बाद जो दूसरी स्थिति बनती है निराकारी स्थिति में ही, वो है विदेह स्थिति। बाबा विदेही विदेही कहते हैं मुरलियों में। तो विदेही स्थिति माना जिस प्रकार जनक राजा का मिसाल दिया जाता है, जनक राजा महल में रहता था लेकिन महल में रहते हुए भी उसको मोह नहीं था, उस महल का कोई आकर्षण नहीं था। तो उस महल का आकर्षण क्यों नहीं था? क्योंकि उसने अपने आप को नष्टो मोआ बना दिया। तो नष्टो मोआ, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो केवल निमित्त हूँ, मेरा कुछ नहीं है। तो इसको जैसे ये कहाँ से उसको ये भावना भासना आई या ये पुरुषार्थ किया, जब उसके मन में ये प्रश्न उठा था कि मुझे एक सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए। बाबा की मुरली में आता है एक सेकंड में जीवन मुक्ति, राजा जनक के मिसल। तो राजा जनक को एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, इसका अर्थ क्या है? सेकंड में जीवन मुक्ति, बाबा कई बार अर्थ उस रूप में बताते, बस ये ज्ञान अलफ बे, एक सेकंड का ज्ञान है, वो तो वो है, लेकिन ये सेकंड में जीवन मुक्ति मुझे चाहिए। तो बाबा के सामने कई विद्वान वो दिखाते हैं, जनक राजा राजा थे तो सभा करते थे, विद्वानों को बुलाते थे। तो विद्वानों से पूछा, मुझे सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिल सकती है? बस एक सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं, एक सेकंड। तो बहुतों ने कोशिश की उसको समझाने की, राजा जनक को, कि विदेह स्थिति एक सेकंड में जीवन मुक्ति स्थिति है, वो कैसे होती है? तो लंबा चौड़ा सुना, एक सेकंड में तो सुना नहीं सके। लेकिन फिर उनके जो गुरु थे अष्टावकर, अष्टावकर ने उनको एक सेकंड का ज्ञान दिया, वो सेकंड में जीवन मुक्ति। वो उस समय घोड़े पर चढ़ रहे थे, एक एक पैर उसका घोड़े पर था, सैडल जो होता है ना, क्या बोलते हैं जहाँ पैर रखते हैं, नकाब, और दूसरा पैर इसका धरती पर था। तो एक पैर उसके नकाब पर, नकाब न, एक बोले ना ल या र, र, रकाब, अच्छा रकाब, सैडल कहते इंग्लिश में है ना, तो रकाब, और दूसरा उस धरती पर था। तो अष्टावकर ने उनसे पूछा, आप कहाँ हो, धरती पर हो या घोड़े पर हो, नीचे हो या घोड़े पर हो? तो वो देखने लगा, क्योंकि अभी चढ़ रहा था, एक पैर था घोड़े के रकाब पर और दूसरा नीचे था, और जंप मारना था, उसी समय पूछ लिया, रुको अब कहाँ हो? तो उसने कहा, मैं धरती पर हूँ। तो कहा कि एक पैर तो आपका उस रकाब पर है, तो कहाँ हो? तो धरती या रकाब कहाँ, क्योंकि दोनों में से एक जगह ही होना चाहिए ना। तो उसने कहा, दोनों पर हूं। तो राजा, तो अष्टावकर ने कहा, दोनों पर हो और दोनों पर नहीं हो, बस यही है सेकंड में जीवन मुक्ति। यानी संसार में है पर फिर भी संसार में नहीं है, जिसको बाबा कहते जीवन में रहते मुक्ति। मुक्ति अर्थात किसी भी आकर्षण से मुक्त, इसको कहेंगे जीवन मुक्ति। सतयुग में देवताओं के पास कोई कमी नहीं, पर इसलिए कोई आकर्षण नहीं, ऐसे नहीं कि कोई दैहिक आकर्षण होगा या स्थूल आकर्षण होगा। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, हाँ एक है कि अनासक्त वृत्ति, और अनासक्त वृत्ति माना कोई भी इच्छा नहीं। तो देवताओं की कितनी अनासक्त वृत्ति होगी, कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या है। पर इच्छा नहीं, केवल नहीं, कई कहते ना इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो अच्छा लगना भी क्या है, ये भी इच्छा है, ये भी आसक्ति का अंश है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है माना और चाहिए। कई बार होता है ना कोई सब्जी बहुत टेस्टी होती है तो हम कहते हैं ये थी सब्जी तो बड़ी टेस्टी है, ऐसे नहीं कहेंगे और चाहिए। लेकिन कहेंगे ये सब्जी तो बड़ी टेस्टी है, तो वो जो परोसने वाले कहते हैं और चाहिए और दे दूं। हाँ, टेस्टी है का मतलब क्या है, टेस्टी है माना और चाहिए, भाव तो यही है ना, अच्छी लग रही है, और अच्छी नहीं लगेगी तो कोई कहेंगे नहीं 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 बस बस। और कई फिर ऐसे हैं बाहर से कहेंगे नहीं 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 ठीक है, क्योंकि समझते मैं जो अनासक्त रहना है, बहुत इच्छा नहीं रखनी है, जीभ के टेस्ट के पीछे नहीं जाना है, तो नहीं नहीं भी करेंगे लेकिन ऐसे ऐसे नहीं 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 यार ऐसे वो थाली पर नहीं करेंगे ताकि थाली में तो डाल सके ना, वह दूर से करेंगे। अगर सचमुच थाली पर वो नहीं चाहिए तो थाली पर ऐसे ऐसे करेंगे ना, नहीं वो साइड में करेंगे ताकि वो भले वो देखे ही नहीं और वो और डाल सके। हा? चाहिए भी नहीं और चाहिए भी जी, हाँ सूक्ष्म इच्छा तो है ही ना, तो इसीलिए तो वो आसक्ति तो रही ना, तो बाबा कहते वो भी ना हो तो देवताएं तो कितने अनासक्त होंगे, आप सोचिए। इच्छा मात्र अविद्या, इसका मतलब ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है इस सोच से भी न्यारे होंगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज ही नहीं होगी जो अच्छी नहीं होगी, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसलिए कई कहते भाई कुछ अच्छा न हो तो बताए, तो वो कहे कि हाँ ये अच्छा नहीं है, इसीलिए वो नेचुरल रूप में अनासक्त है, नेचुरल रूप में नष्टो मोहाय नेचुरल, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती अनासक्त होने के लिए। यहाँ हम लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, नहीं 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 और नहीं लेना है, होता है ना, नहीं बाबा पेट खराब हो जाएगा, कई बार ऐसे भी होता है कि पता है ये अच्छा है लेकिन पेट खराब भी हो सकता है, इसीलिए ज्यादा नहीं चाहिए। तो वो पेट खराब हो सकता है इसलिए नहीं चाहिए, ये एक संकल्प है, दूसरा है कि आसक्ति है ही नहीं, बस पेट भर गया तो चाहे कुछ भी दे दो, कुछ भी दो लेकिन हम लेंगे नहीं। तो ये जो सन्यासियों का दिखाते हैं वो ऐसे अनासक्त थे, बौद्ध भिक्षुओं का दिखाते हैं, सन्यासियों का दिखाते हैं, वो देखते भी नहीं थे कि क्या दिया, बस आंखें जैसे बंद की, बस माते भिक्षे माते भिक्षा, और क्या डाला वो देखते भी नहीं थे। हाँ, क्योंकि देखेंगे तो थोड़ी आसक्ति जाएगी, तो इसलिए देखना भी नहीं, तो अनासक्त वृत्ति। तो ये भिक्षुओं का, बौद्धि भिक्षुओं का, जैनियों का भी आप ऐसे देखते होंगे, तो सन्यासियों का भी तो ऐसे ही था, ये सब उसी रूप से है। तो बाबा कहते हैं ये विदेह स्थिति है, विदेह स्थिति माना ऐसी अनासक्त स्थिति जो सब कुछ देखते हुए भी चाहिए तो नहीं लेकिन ये मेरा है ये भी सोच से परे। इसलिए कहते राजा जनक अनासक्त था, विदेह था, तो मेरा कुछ भी नहीं है, है इस महल में और इस जैसे नहीं है। तो मिसाल देते हैं कि राजा जनक का जो गुरु था वो अष्टावक्र था ना, तो अष्टावक्र ने एक दिन एक सपना राजा जनक ने एक सपना देखा, उस सपने में उसने क्या देखा कि कोई दूसरा राजा उस पर चढ़ाई कर रहा है किया, और चढ़ाई करके राजा जनक का राज्य जीत लिया, छीन लिया। अब राजा जनक तो हार गई वो राज्य, तो उसको बंदी बना करके उस राजा के पास ले आई जिसने वो उनका राज्य जीता, और फिर जब उनके सामने आए तो उस राजा ने इनसे पूछा अभी तो ये राज्य मेरा है, आप के साथ मैं क्या व्यवहार करूं, आप क्या चाहते हैं, अब इस राज्य में तो आपका कोई अधिकार नहीं है। अब राजा जनक तो वैसे ही विदेह थे, विदेह स्थिति में थे, उनको कोई मोह तो था ही नहीं। उसने कहा ठीक है, मुझे न ये राज्य चाहिए न ये पद चाहिए, बस मैं जाके सन्यासी बनता हूँ। तो मुझे केवल ये जब तक मैं जंगल में पहुंचूं तब तक कोई मुझे पहुंचा के आ जाए, तो एक सिपाही को भेजा, इसको जंगल में भेजो। और जंगल में जैसे उसको लेके जा रहा था, उसी वक्त उनको भूख लगी। अब भूख, ये सब स्वप्न देख रहा है, भूख लगी। तो सिपाही से कहा कि अगर आपके पास कुछ रोटी हो, भूख लगी है, अब जंगल में क्या मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने, सिपाही ने थोड़ी दया करके जो उसके पास कुछ होगा वो उसको दिया। अब वो जैसे ही मुख के पास लाया, अब घोड़े पर था, और एक चील आकाश से उड़ता हुआ आया, उसको झपटा मारा और वो चीज उससे छीन ले। उसी वक्त उसकी आंख खुल गई, और आंख खुल गई तो देखता है न चील है, न उसको भूख लगी है, न वो जंगल जा रहा है, न वो घोड़े पर है, वो न उसका राज्य गया है, कुछ भी नहीं गया है। वो तो अपने महल में सोया हुआ है, बहुत सुंदर आलीशान अपने बिस्तर पर। तो चारों ओर देखता है, कहता है अब सत्य क्या है, ये जो मैं देख रहा हूँ ये सत्य है, या वो जो स्वप्न देखा वो सत्य है, सत्य क्या है। तब फिर अष्टावक्र को बुलाया। अष्टावक्र ने बहुत सुंदर बात कही, राजन ये जो आप महल देख रहे हो ना, ये भी सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि सत्य की परिभाषा क्या है, जो चीज स्थायी हो, जो चीज एक रस हो, जो चीज अविनाशी हो, जो अपरिवर्तनशील हो, वो सत्य है। और इसके विपरीत जो चीज बदलती रहती है, बदलती है, जो चीज विनाशी है, जो चीज परिवर्तनशील है, जो आज है कल नहीं रहेगी, वो सब असत्य है। तो राजन ये जो आप देख रहे सब असत्य है, क्योंकि यही मानते ना, ये जगत जो है वो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। तो जगत मिथ्या क्यों मानते? क्योंकि ये जगत परिवर्तनशील है। आज ये मकान है, 50 साल के बाद तो पता नहीं कितना खंडर हो जाएगा, या 100 साल के बाद जब देखो खंडर मकान देखते, पर वो अपने समय पर तो कितने मजबूत होंगे, अभी वो खंडर हो गए हैं। तो ये सब असत्य है क्योंकि परिवर्तनशील है। तो राजन ये सब असत्य है, और वो जो स्वप्न आपने देखा वो भी असत्य है क्योंकि खत्म हो गया। ये स्वप्नमय संसार कह दिया, वो जैसे स्वप्न देखा स्वप्न गया, या एक बुदबुदा कहते हैं, बस बुदबुदा निकला और बुदबुदा नष्ट हो गया। तो ये स्वप्नमय संसार है। तो कहा कि अगर ये भी स्वप्न है, सत्य नहीं है, और ये जो देख रहा वो भी सत्य नहीं है, तो सत्य क्या है? तब जब राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा, जिसने दोनों का अनुभव किया, अनुभव किसने किया? आत्मा ने। तो जिसने अनुभव किया वो सत्य है, और तुम वो जिसने अनुभव किया, बस। अब वो अनुभव करने वाली आत्मा है, तो आत्मा का ज्ञान जैसे उनको मिला, अष्टावक्र ने उनको दिया। अब यही बाबा कहते हैं, है संसार में लेकिन मेरा कुछ नहीं है। और फिर बाबा कहते ट्रस्टी होकर के रहो, ट्रस्टी बाबा का समझो। फिर हाँ है ना, गुरु नानक ने क्या कहा, तेरा 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 हो गया तेरा। तो ये मेरा कुछ नहीं है बाबा, ये सब कुछ तेरा है। तो इस भावना से, इस धारणा से हम इस संसार में रहते हैं, उसको कहते विदेश स्थिति, राजा जनक मिसल। तो बाबा दादी जानकी के लिए कहते थे, और दादी जानकी जब देखो एक ही बात कहती है, हाथ खाली जेब खाली और मैं हूँ दुनिया का वाली। जी जी, हाँ, सफेद कपड़ा जेब खाली और मैं हूँ दुनिया का वाली, माना राजा हूँ मैं, और जेब खाली है, अगर हाथ खाली सफेद कपड़े है, मेरा कुछ नहीं है। बिन कौड़ी बादशाह कहो, बेफिक्र बादशाह कहो। तो ये है विदेश स्थिति, और ये कौन अनुभव कर सकता है जो नष्ट हुआ होगा। अगर थोड़ा भी मेरा मेरा मेरापन है, वो नष्ट हुआ नहीं बन सकता है, और नष्ट हुआ नहीं बनेगा तो विदेह भी नहीं बन सकता है। तो ये जो बाबा कहते हैं विदेह स्थिति, एक है देही अभिमानी स्थिति, चलते फिरते खाते पीते आत्मा देखना, तो आत्मा देखेंगे तो बुद्धि कहीं भी देह अभिमान में नहीं जाएगी, क्योंकि देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। तो इसीलिए देही अभिमानी होंगे तो विकारों से दूर रहेंगे, और विदेह स्थिति रहेंगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार का लगाव नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा। कभी कभी दादी कहती है झुकना, एक वो कहते ना अटकना, चटकना, मटकना, लटकना, ये सब कहीं नहीं होगा। लटकते कैसे है, किसके पीछे ही पड़ते रहते हैं, अटकते कैसे फंस जाते हैं, और चटकते कैसे हैं, जैसे इतना चिपक कर जैसे किसी को रख दिया, और मटकते, मटकना किसको कहते हैं, नखरे करते ना ये, जैसे ये मटकते हैं। तो ये सब तब है जब हम दैहिक आकर्षण में हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इनसे न्यारी बनो, ये विदेश स्थिति है, मेरा कुछ नहीं है, ट्रस्टी। ये ट्रस्टीशिप की भावना बाबा ने क्यों जगाई, क्यों बाबा कहते हैं सब मेरा समझो, बाबा आपका ले थोड़ी लेगा, रखो अपने पास, लेकिन ट्रस्टी होकर के रहो। और जब ट्रस्टी होकर के रहेंगे तो न्यारी स्थिति भी रहेगी, ये सब निराकारी स्थिति के अंतर्गत है। और विदेश स्थिति के बाद फिर कहते अशरीरी स्थिति, ये भी निराकारी स्थिति का ही एक भाग है। तो विदेश स्थिति को या अव्यक्त स्थिति कहो या अव्यक्त को अलग करो, हमारे हाथ में है फरिश्ता, हमारा फरिश्ता स्वरूप वो अव्यक्त स्वरूप। और फिर है बाबा कहते अशरीरी, जब हम योग में बैठते हैं तो आत्मा शरीर से बिल्कुल न्यारी हो जाए, एकदम देह से न्यारी अवस्था। ये देह पहले फरिश्ता देह अनुभव करे योग में अव्यक्त अवस्था, लेकिन फिर एकदम देह से न्यारी अशरीरी में आत्मा ज्योति बिंदु, और वो ज्योति बिंदु बीज रूप, वो निराकारी स्थिति जो मेरी स्थिति आत्मा की परम धाम में है। अब इतने तक हमको जाना है निराकारी स्थिति में, अब सीधा तो उस स्थिति तक नहीं जाएंगे, तो कैसे जाएंगे निराकारी स्थिति तक, पहले देही अभिमानी स्थिति, फिर उसके बाद विदेश स्थिति, फिर अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता स्थिति, ये मेरा शरीर हड्डी मांस का नहीं है, जैसे लाइट का शरीर है, प्रकाश का शरीर है, वो योग की अवस्था में अनुभव कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे शरीर, वो अव्यक्त शरीर भी नहीं, प्रकाश का शरीर भी नहीं, बस एक बिंदु बन गए, आत्मा में आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु, ये तीन बिंदु तो बाबा कहते हैं। तो वो मैं बिंदु आत्मा, बिंदु आत्मा माना सब बातों से परे, सार बन गई, एकदम सार। और वो निराकारी स्थिति है, वो योग के अंतर्गत अगर एक सेकंड के लिए भी हमने अनुभव किया ना, बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसी से हमारे विकर्म विनाश होंगे। क्योंकि एकाग्रता की जैसे शक्ति आती गई आती गई आती गई, वो बिंदु बने, वो उसमें विकर्म विनाश होते हैं। और बाबा उदाहरण क्या देते हैं, जैसे सूरज की किरणें एक कॉन्वेक्स लेंस से फोकस करते हैं, तो फोकस करने में भी टाइम लगता है ना, तो धीरे 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 जैसे फोकस हो जाती है किरणें, और वहां एक कागज रखते हैं केंद्र पर जहाँ सूरज की किरणें केंद्रित हुई, तो वो सूरज की जो किरणें है वो केंद्रित होकर के वो सूरज का प्रतिबिंब कैसा बनाती है, एकदम सूक्ष्म, इतना बारीक, इतना बड़ा सूरज और उसका प्रतिबिंब इतना सूक्ष्म, और वहां कागज रखो तो क्या होगा, जल जाएगा। कैसे जला, क्योंकि वो सारी किरणों को एकाग्र किया। वैसे सूरज अगर धरती पर पड़ रहा है तो कुछ जलता थोड़ी ऐसे, पर एकाग्रता के कारण वो उसका जो प्रतिबिंब इतना सूक्ष्म बना, जिसके कारण ही वो जलना शुरू हो जाता है। इसलिए वो दिखाते ना, कल गोविंदा की बात की, ये कौन अपना उसका गोविंदा ने ये क्या गणेश जी की, गणपति की, उसकी आंखें इतनी छोटी है, किसी की आई साइट कमजोर होती है ना, परंतु उसको फिर भी देखना है तो क्या करेगा, अगर उसको थोड़ी शार्पनेस चाहिए तो क्या करते हैं, आंखें इतनी छोटी बना दो तो वो शार्पनेस आती है, वो एकाग्रता मिलती है। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये एकाग्रता की शक्ति से आप कैसे उस बीज तक पहुंचेंगे और उसी से आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं। और कैसे पता चलता है विकर्म विनाश होते, क्योंकि उस एक सेकंड की भी अगर वो स्थिति रही ना, उसके बाद आप इतने हल्के हो जाएंगे। ये हल्कापन ये वास्तव में विकर्म विनाश की निशानी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा विकर्म विनाश हो रहे, कैसे पता चलता है, हल्कापन। और हल्केपन के बाद परिवर्तन, जैसे आग में कोई चीज पड़ी तो क्या होगा, वो चीज बदल जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी, उसका नाम भी बदल जाएगा, रूप बदल जाएगा, गुण बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। तो ये है एकाग्रता की शक्ति की कमाल, और ये निराकारी स्थिति। अब वहां तक हमें पहुंचना है जो हमने ब्रह्मा बाबा में देखा। ब्रह्मा बाबा जब चलते भी थे ना तो पता चलता था जैसे कितना लाइट, कितना देही अभिमानी होकर के बाबा चलते, ऐसे नहीं बाबा इधर उधर उधर ऐसे नहीं देखते थे, बिल्कुल जैसे न्यारे होकर के चल रहे हैं। कई बार बाबा का हाथ पकड़ते थे, दादियां भी अनुभव बताती, इतना कोमल 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 जैसे कि हड्डी नहीं है, उस प्रकार से था बाबा का शरीर भी, इतना जैसे बिल्कुल कोमल ऐसा अनुभव होता था। नहीं तो बुढ़ापे में तो क्या होता है, कैसे घट्ट हो जाता है, कठोर हो जाता है, लेकिन बाबा कैसे नहीं था, क्योंकि वो न्यारी स्थिति बाबा ने कैसे बनाई। हम दादी जी का भी देखते, जानकी दादी का भी देखते हैं, यानी इतनी बड़ी एज है, लेकिन उसका हाथ पकड़ो ना ऐसे लगता है जैसे कि ना इतना कोमल है, इतना कोमल है। तो ये अशरीरी स्थिति की बात है। कई बार कहते हैं, कई जब हमसे कहते हैं कि आपकी मेरी चीज बॉडी की एज 72 इयर्स है, आई एम 72 फिजिकल बॉडी, तो लोग कहते हैं आप लगते नहीं है, तो भाई क्योंकि तपस्या है ना, तो वो तपस्या जो है तो उसका फर्क तो पड़ेगा ना, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। तो इसलिए ये निराकारी स्थिति का अनुभव हम करते हैं, जो हम योग में इतना सुंदर अनुभव कर सकते हैं, जैसे योग में बैठे एकदम हल्के हो गए, एकदम न्यारे हो गए, एकदम सब बातों से परे हो गए, अंदर में संघर्ष नहीं करना पड़े। नहीं तो कई बार संघर्ष करना पड़ता है, व्यर्थ को रोकना पड़ता है, दबाना पड़ता है, ये संघर्ष नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम योद्धे नहीं हो, तुम योगी हो। योद्धे संघर्ष करते हैं और योगी स्थित प्रज्ञ रहते हैं। तो इसीलिए वो निराकारी अवस्था, और उसी से मनसा सेवा हो सकती है। जब मनसा सेवा की बात कहते हैं, यहाँ बैठे मन से सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं। पिछले संडे को बाबा ने इसी संडे की मुरली थी मनसा सेवा की। सारी दुनिया में तो हम घूम करके तो नहीं जाएंगे या सेवा करेंगे, एक जगह से मनसा सेवा कर सकते हैं। सूरज कोई सारी दुनिया में नहीं घूमता, एक जगह है पर सारे विश्व को प्रकाश दे सकता है। तो बाबा को भी कोई ऐसे नहीं सब जगह जाना पड़े, बाबा तो एक सेकंड में अब संकल्प द्वारा ही सृष्टि बना देते ना, भगवान ने संकल्प से सृष्टि बनाई, या ब्रह्मा जी ने संकल्प से सृष्टि। तो एक संकल्प में स्थित होना ये एकाग्रता की शक्ति है जो मनसा सेवा करा सकती है, किसी आत्मा को भी तृप्ति दिला सकती है, उसको भी शक्ति दिला सकती है ये मनसा सेवा। तो निराकारी अवस्था माना मनसा द्वारा सेवा करना, क्योंकि ऊंचे टॉप स्थिति पर आ गए, और टॉप स्थिति पर आकर के नीचे आप सकाश दे सकते हो। देही अभिमानी में आप खुद अपने आप को संभाल रहे हो, आप बिल्कुल नीचे हो, तो चलो एकदम नीचे जो देह अभिमान है उनसे थोड़ा न्यारे हुए, लेकिन वो निराकारी अवस्था आत्मा बीज रूप बन करके सार बन जाती है, वो अवस्था तक पहुंचना है, तब विकर्म विनाश होंगे। फिर बाबा कहते हैं दूसरी अवस्था है निर्विकारी अवस्था। तो निराकारी अवस्था है मनसा की अवस्था, निर्विकारी अवस्था है कर्मणा की अवस्था, और निरअहंकारी अवस्था है वाचा की अवस्था। तो निराकारी हम निरअहंकारी कहेंगे, फिर निर्विकारी कहेंगे तो ज्यादा सहज होता है। निराकारी और निरअहंकारी, तो वाणी में निरअहंकारी, वाणी से पता चलता है मनुष्य के अंदर कितना अहंकार है या नहीं है। तो उसमें भी तीन बातें हैं, एक है भान, दूसरा है अभिमान और तीसरा है अहंकार, और इन तीनों से न्यारे निरअहंकार। कई बार कई पूछते हैं निर्विकारी में निरअहंकारी नहीं आ गया क्या, क्योंकि पांच विकार जब कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो पांच विकारों में अहंकार भी आ गया, तो निरअहंकारी निर्विकारी में नहीं आता है कि अलग से कहना पड़ता है निरअहंकारी? आता है या नहीं आता है निरअहंकारी? जी निरअहंकारी भल कहेंगे कि निर्विकारी में आता है, लेकिन निरअहंकारी पर अलग से मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अहंकार ही है जो लास्ट में हमको धोखा दे सकता है। ये देह अभिमान का भी तो कारण अंदर का अहंकार ही है ना। देह अभिमान तो दोनों प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का देह अभिमान है। एक देह अभिमान है जिससे कई कहते उनको कुछ काम दो ना, भाई मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंदर कहाँ से ये ताकत है, मेरे पास शक्ति नहीं है। तो शक्ति नहीं है माना ये देवी देह अभिमान, मैं ही कर सकती हूँ ये भी देह अभिमान, ये दोनों अपोजिट साइड देह अभिमान है। मैं ही कर सकती हूँ, मेरे द्वारा ही हो सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, मुझे ही करना है और किसी को नहीं करने दूंगी, ये तो चलो समझ जाते ये देह अभिमान को या देह अहंकार करो। पर इसका जो अपोजिट साइड है मैं नहीं कर सकती हूँ, इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी तो देह अभिमान का ही तो एक भाग कहेंगे, मेरे द्वारा नहीं हो सकती है। नहीं शब्द जो कहा ना, ये नहीं भी देह अभिमान का ही सूचक है। जैसे इंग्लिश में कहते हैं I am something, I am not everything, I am something, but as something, I can do everything. I am something, I am not everything. यानी मैं दे एवरीथिंग भी नहीं हूँ, अहंकार भी ना आ जाए। I am something, but I am something and I can do everything. अगर I am everything and I can do everything, वो अहंकार हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो भी ना हो, क्योंकि दूसरों को भी आगे रखना है, दूसरों को भी आगे करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सबको आगे किया। बाबा कई बार कहते थे जगदीश भाई के लिए कि बच्चे जगदीश बच्चा बहुत होशियार है, देखो इतना अच्छा लिखता है, हाँ जगदीश बच्चा ये काम कर सकता है। हालांकि क्या बाबा भी कर सकते थे, पर जगदीश बच्चे को क्यों, क्योंकि बाबा ने उनको आगे किया। आप लोगों को मालूम है ना जगदीश भाई का एक जो वरदान जैसे बाबा ने उनको दिया, बाबा जगदीश पे अपना अनुभव में बताया थे कि एक बार जगदीश भाई को सबने जानते होंगे ना, जो पुराने वो तो जानते होंगे। तो जगदीश भाई अपना अनुभव सुना रहे थे, एक बार हम तीन भाई मधुबन में आए थे, तो बाबा मुरली में कहते थे बच्चे एक पैम्फलेट बनाओ, एक पैम्फलेट में ये जो तीन बातें थी ना जो आज की मुरली में भी थी, क्वेश्चनेयर और गंगा, वहाँ उस समय कुंभ मेला होना था, तो कुंभ मेले के लिए एक पर्चा बनाना था। तो बाबा ने तीनों को कहा कि अब पर्चे का मैटर लिखो और कल सुबह वो मैटर लिख करके आना, बाबा देखेंगे। अब बाबा ने तो कह दिया, तो इन्होंने सोचा कि हम रात को लिख लेंगे। अब जैसे ही लिखने बैठे उसमें बिजली चली गई। अब वो दोनों ने कहा बिजली चली गई, अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, छोड़ो। हम देखेंगे, कल सुबह देखेंगे। अगर बाबा कहेंगे तो बाबा को कह देंगे, बाबा क्या करे, बिजली नहीं थी, बहाना तो मिल गया ना, बिजली नहीं थी, रात भर कहाँ बिजली थी, सुबह भी बिजली नहीं आई है, अभी तो जनरेटर, उस समय जनरेटर भी कहाँ था, कुछ भी नहीं था। परंतु जगदीश भाई ने कहा, बाबा ने कहा है तो जरूर लिखना है। अब बिजली नहीं थी तो उसने क्या किया, एक कहीं जो रात का पहरा देता था उनको कहा कि एक मोमबत्ती दो, मोमबत्ती आपके पास होगी, तो उसने उसको मोमबत्ती दी और मोमबत्ती के सहारे उसने मैटर लिखा। आप सोचो, तो अगले दिन जब बाबा ने पूछा सवेरे, तो उन्होंने तो सहज ही बहाना दे दिया, बाबा लाइट नहीं थी ना, तो हम नहीं लिख सके। और जगदीश भाई ने कहा, बाबा मैंने लिखा है। तो बाबा ने कहा, कैसे लिखा आपने, लाइट तो थी नहीं। तब उसने बताया कि कैसे मैंने मोमबत्ती मंगाई और वो मोमबत्ती के सहारे मैंने लिखा, उस समय टॉर्च वॉर्च का भी कहाँ कुछ था, तो बाबा ऐसे लिखी। तो बाबा ने उनको कहा, देखो इनको तरीका आ गया ना, इन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया, आपने नहीं निकाला रास्ता, उनको बुद्धि में नहीं आया, वो तो सो गए, लेकिन बाबा जागता रहा, बाबा का काम मुझे करना है जगदीश भाई। तो बाबा ने उसी समय जगदीश भाई को वरदान दिया कि बच्चे आपकी जो कलम में बहुत शक्ति होगी, आप बहुत कुछ अपने कलम के द्वारा शिव बाबा की सेवा करोगे। बस ये वरदान उनको मिला। और उसके बाद जो आप देखेंगे ना, आप जितने भी हम लोगों के ये सारे जो किताबें हैं, लिटरेचर है, वो जगदीश भाई के द्वारा लिखे हुए, अभी और भी लिखते हैं, लेकिन जगदीश भाई ने जो लिखा वो तो नंबर वन है। तो क्या कहेंगे इसको, आई एम समथिंग, आई एम नॉट नथिंग, क्योंकि कई तो नथिंग समझते हैं अपने आप को, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, ऐसे भी नहीं, मैं कुछ हूं, सब कुछ भी नहीं हूं, पर मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर कोशिश करते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते, बाबा की मदद मिलेगी। लेकिन कई समझते हिम्मत भी बाबा ही देवे, मदद तो दे रहे लेकिन हिम्मत भी बाबा ही देवे, बाबा कहेंगे हिम्मत तो अपनी रखो, अपनी घोर तो नशा चढ़े, बाबा ने कल कहा। तो एक कदम आगे आओ तो बाबा 10 कदम 100 कदम आगे आएंगे, पर हम ही एक कदम आगे नहीं जाएंगे तो 100 कदम बाबा कैसे आएंगे। तो इसीलिए अपने देह अभिमान में ये हीनता की भावना भी आ सकती है और देह अभिमान में उपलब्धियों का घमंड भी आ सकता है, और बाबा दोनों के लिए मना करते हैं। कल भी बाबा का जो स्लोगन था, क्या क्या था, आपके पास जो भी उपलब्धियां हैं, जो कुछ भी टैलेंट्स है आपके अंदर, जो कुछ है ये सब क्या है, ये प्रभु का प्रसाद है। तो प्रभु का प्रसाद माना भगवान ने दिया है, तो उसका अभिमान तो नहीं रख सकती है ना। तो निरअहंकारी स्थिति, निरअहंकारी माना दोनों तरफ से नहीं हो, एक जो नेगेटिव की स्थिति जिसको हम कहते हैं, एक नकारात्मक स्थिति कहो या एक हीनता की भावना वो भी ना हो, और इतना पॉजिटिव जो मैं ही कर सकता हूँ ये भी ना हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये मिडिल पाथ है, ये बीच का रास्ता है, बैलेंस जिसको बाबा कहते हैं। तो अपनी वाणी में भी इतना अभिमान न हो कि मैं ही सब कुछ हूं, और इतनी हीनता भी नहीं हो कि मैं कुछ भी नहीं हूं। दुनिया में ये दोनों है। मंदिर में जाएंगे, आरती जब करते तो क्या कहते हैं, मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं दास हूं, कपटी हूं, गंदा हूं, बंदा हूं, चरणों की धूल हूं, मिट्टी हूं, मूर्ख हूं, निर्बल हूं, है लंबी लिस्ट है, मैं हूं, मैं ये हूं। और फिर कहेंगे, कृपा करो भरता, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हाँ कृपा करो भरता, जो भी। तो इतना हीन अपने आप को बना दिया, और जब दुनिया में जाते हैं तो मेरे जैसा कोई नहीं। तो दोनों एक्सट्रीमेंट्स, इतना घमंड रखते हैं जो बात मत पूछो, धन का घमंड, अपनी बुद्धि का घमंड या अपनी पोजीशन का घमंड, न जाने क्या, और या तो एकदम नीच। तो इसको कहते हैं अज्ञान। तो ज्ञान क्या है, दोनों एक्सट्रीम एंड्स अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। ये भी मैं हूँ ना, मैं फलानी हूँ, मैं वो हूँ, ये दोनों अज्ञान। पर मैं ज्ञान स्वरूप, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये मैं हूँ। अब इस मैं में तो बहुत कुछ आ जाता है, क्योंकि मैं आत्मा इन गुणों की स्वरूप हूँ, तो मैं तो अनुभव करती हूँ, लेकिन मैं दूसरों को भी बांटती हूँ। तो दूसरों को बांटती हूँ तो दाता बन जाती हूँ। ये नहीं कि मैं किसी से मांगती हूँ, मेरे पास है, इसलिए हम कहते ना भाई खुशी ये बाहर से नहीं लेनी होती, आपके पास है। शांति बाहर से नहीं लेनी है, ये आपके पास है। तो जब ये मेरे पास है तो मुझे बांटनी है, मुझे मांगनी नहीं है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी, बाबा से भी नहीं मांगूंगी, बाबा मुझे शांति दो। मांगेगी क्या शांति? कोई कोई मांगते हैं, शिव बाबा हमें शांति दो, मांगते हैं क्या? नहीं मांगते, कोई कोई मांगते हैं, देखो हाहा कर रहे हैं, इसे सिर हिला रहे हैं, मांगते हैं। तो कई कहते हैं ना कि बाबा हम और तो कुछ नहीं मांगते, दुनिया में तो बहुत कुछ मांगते हैं भगवान से, धन मांगेंगे, पुत्र मांगेंगे, मकान मांगेंगे, नौकरी मांगेंगे, ये मांगेंगे, वो दो 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 दो। तो बाबा कहते ये सब बाबा से मांगो मत, जो है उसका धन्यवाद करो, बहुत दिया है बाबा ने, मांगो नहीं। तो कई कहते और तो कुछ नहीं मांगते, पर शांति तो मांगे ना। अब बाबा कहते शांति भी मांगने की चीज नहीं है, ये तो आपके पास ही है, तो फिर मांगो क्या? फिर कहते अच्छा अब चलो ये भी ना मांगे। लेकिन हम कितनी भूले करते हैं जीवन में, तो बाबा से हम माफी तो मांगे, तो माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? माफी नहीं मांगनी चाहिए, अगर कोई भूल की तो माफी मांगनी है कि नहीं? अभी आज आपने धर्मराज को पत्र लिखा, उसमें माफी मांगी कि नहीं? माफी मांगी? जिन्होंने सचमुच माफी मांगी हाथ उठाओ, देखो कितनों ने माफी मांगी। अब बाबा के बच्चे और माफी मांगे बाबा माफ कर दो, देखो बाबा कहते हैं ये भी भिखारी बनाए है? माफी मांगना भी भिखारीपना नहीं है? अब बाबा तो कहते भिखारी नहीं हो तुम, तो अधिकारी हो, तो फिर क्या करें? कई कहते पर भूल हुई है तो बाबा माफी कैसे नहीं मांगेंगे? तो बाबा कहते सच बताओ, देखो एक है सच बताना, बाबा ये मेरे से भूल हुई, बाबा ये मैंने भूल की। लेकिन इसके आगे का वाक्य ये नहीं है, बाबा मेरे से ये भूल हुई इसलिए मुझे माफ करो। बाबा को बता दिया, जैसे बाबा के पास पहुंच गया, और उसके बाद आप अंदर में संकल्प करो, दृढ़ता लाओ, प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि प्रतिज्ञा की बाबा ये मैं भूल फिर आगे कभी नहीं करूंगी या करूंगा, तब शक्ति आएगी। अब माफ करो माफ करो, वो तो आपका बच्चा भी कहेगा मम्मी सॉरी मम्मी सॉरी मम्मी सॉरी करता होगा ना, ना कोई कुछ किया मम्मी सॉरी, तो आप कहेंगे सॉरी सॉरी, कब तक मैं आपका सुनती रहूंगी? बदलो भी तो अपने आप को, परिवर्तन में परिवर्तन भी तो लाओ ना। तो बाबा भी माफ किया या नहीं किया, बाबा ने माफ, ये आपको कैसे पता चलेगा? किया यानी आपने कह दिया बाबा माफ करो तो हो गया माफ है? अच्छा हल्कापन महसूस होता है माफ करो कहने से? माफ करो कहने से हल्कापन महसूस होता है? होता है कि नहीं होता है? थोड़ा थोड़ा होता है जी, हाँ हल्का, बाबा को बता दिया पर माफ करो कह दिया तब थोड़ा हल्का होता है नहीं? तो बाबा कहते हैं जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हम तो कहेंगे बाबा से प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञाएं कितनी करते हैं बाबा से? बाबा कई बार मुरली में कहते हैं नया साल आता है तो बच्चे संकल्प करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं ना, तो बहुत करते होंगे। लेकिन फिर उनको अमल कहाँ तक लाते हैं वो भी कभी देखते हैं नहीं देखते। हमने ये लिस्ट तो बनाई, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, पर कितना किया कितना किया उसको भी आप टिक मार्क करते रहते हैं या नहीं? जैसे टाइम मैनेजमेंट में बताते वही प्रायोरिटी देते, पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, अब होता जाए तो टिक मार्क करते जाओ। तो इसी प्रकार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, इतनी इतनी बातें सोचते ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन क्या क्या किया वो भी तो देखो। तो प्रतिज्ञा करना माना बाबा के सामने एक संकल्प करना, और संकल्प किया माना जिसको बाबा कहते धर्त पढ़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये क्षत्रियों के लिए कहा जाता था कि कुछ भी हो जाए जो मैंने संकल्प किया है वो मैं करूंगा। आज भी बाबा ने कहा ना, स्त्री पति को कहती है मुझे तो भगवान कहता है पवित्र बनो तो स्वर्ग में तुम जाओगे, मुझे तो बनना ही, एक संकल्प प्रतिज्ञा, कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए उसके लिए मर मिटना पड़े, अंदर में मैंने प्रतिज्ञा की। हमारी दादियों ने क्या किया शुरू में, तभी तो इतने इतनी शक्तिशाली बने ना। तो प्रतिज्ञा बहुत जरूरी है। कई कहते हैं हम प्रतिज्ञा करें और नहीं कर सके तो, इसलिए कई लोग ना ज्ञान में क्यों नहीं आते, भाई नहीं हम ये जो कहते हैं फलानी चीज नहीं खाओ, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, तो ये परहेज हम नहीं कर सके तो, इसलिए ज्ञान ही नहीं लेते, ज्ञान ही नहीं लेते हम ये नहीं कर सकते परहेज, हम ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं तो फिर बैठे रहो जो चाहिए करो, मना तो है नहीं, हम किसको जबरदस्ती तो किसी को भी नहीं करते। और बाबा कहते हैं स्थापना तो हुई पड़ी है, जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे अभी भी हुई पड़ी है, वो तो अपना काम तो बाबा कर ही रहे हैं, उन किसी के न आने से या न करने से कोई सतयुग तो रुक तो नहीं जाएगा ना, वो तो अपना बन ही जाएगा, जो कार्य भगवान को करना है अगर हम कर रहे हैं तो अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं और किसी दूसरे की तो नहीं, हम कोई बाबा को भी क्या एहसान कर रहे हैं, बाबा को कुछ चाहिए क्या हम हमारे से? अगर हम धन से भी सेवा करते हैं तो क्या बाबा को क्या है? बाबा पर एहसान करते हैं कुछ भी नहीं, अपने ही तन मन धन से अपने लिए ही करते हैं। तो इसलिए वो जो निरअहंकारी स्थिति है उसका मतलब कि दोनों एक्सट्रीम एंड्स नहीं, निचली वो छोट अंदर हीनता की भावना भी नहीं और बहुत अभिमान भी नहीं, इसको कहेंगे निरअहंकारी स्थिति। मैं कर सकता हूँ कर सकती हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, हिम्मत रखूंगी बाबा की मदद मिलेगी ये निश्चय, इसको कहेंगे निरअहंकारी स्थिति। मैं ही कर सकता हूँ तो बाबा कहते हैं सब आपसे दूर जाएंगे, आपसे दूर जाएंगे, क्योंकि अभिमान के ही बोल होंगे, तो जिसके अभिमान के बोल होते हैं ना सब उनसे किनारा करते हैं, कोई उनके समीप नहीं जाएगा। पर जो निरअहंकारी होगा वो सबको रिस्पेक्ट देगा और खुद भी उसी रिस्पेक्ट में रहेगा, क्षमा भी करेगा और कोई खुद भी भूल नहीं करेगा। कई बार होता है कि हम दूसरा कोई भूल करता हम क्षमा ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं क्षमा कर सकते, चलो भूल हो गई तो हो गई ना, अभी क्या, चलो आगे के लिए संकल्प कर लिया नहीं करेंगे तो क्षमा कर भी देनी होती है। और बाबा यहाँ तक कहते अगर किसी को क्षमा नहीं की तो इसका मतलब खुद को भी क्षमा नहीं की, क्योंकि अंदर ही अंदर याद रहेगा और जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा तो याद तो आएगा ना इसने ऐसे किया था। तो केवल क्षमा ही नहीं करनी है, भूल भी जाना है। कई बार चलो क्षमा कर लेते हैं, है ना, बाबा कहते बदला न लो बदल के दिखाओ, तो बदला नहीं लेना है, क्षमा करना माना बदला नहीं लेना है, पर बदला नहीं लेना ही सब कुछ नहीं है ना, बदल के दिखाना माना उस बात को याद भी नहीं करना। अगर याद किया माना अभी तक अंदर में बदला लेने की भले भावना ना है पर बुद्धि में याद तो है ना, और वो याद है तो बाबा कहते ये भी परचिंतन हो गया। कल तो देखो बाबा ने क्या मुरली में कहा, सब परचिंतन, फलाना क्या होगा क्या होगा, क्यों परचिंतन करते हो, वो जो करेगा वो पाएगा ना, जैसा करेगा वैसा पाएगा, बाबा बैठा है उनका रखने वाला। दुनिया में भी हम देखते हैं हम लॉ को अपने हाथ में उठाते हैं क्या? क्या करते हैं? अगर कोई बात है तो जाके भाई पुलिस में रिपोर्ट करो, कुछ भी है ना। हम थोड़ी किसी ने मुझे थप्पड़ मारी और मैंने उठा करके उसको बंदूक से उड़ा दिया, भाई इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारी? पर आपने कानून को हाथ में क्यों उठाया? आपको कोई अधिकार नहीं है कानून को हाथ में उठाने का। तो किसी के प्रति भी हम बदला लेंगे ये जैसे कानून को हाथ में उठाना है, हम अपने आप को देखें मुझे क्या करना है। तो इसीलिए बाबा कहते निरअहंकारी स्थिति माना, कोई कैसा भी है परंतु मुझे नम्र बन करके उनसे बात करनी है, बस ये है निरअहंकारी स्थिति। और ब्रह्मा बाबा में हमने इतना जबरदस्त रूप में देखा। किसी ने मेरे से पूछा बाबा को कभी गुस्सा आता था? ब्रह्मा बाबा को आप क्या सोचते, बाबा को गुस्सा आता होगा? हा? थोड़ा थोड़ा बाबा किस पर नाराज होते थे? कभी नहीं, कभी भी नहीं। बाबा सुनते थे, बाबा पता था बच्चे ने ऐसे किया है, फिर भी देखो बाबा उनको कहेंगे अच्छा बच्चे भूल जाओ, क्षमा कर दो। कल भी बाबा ने कहा ना, हाँ जो दिन का भूला हुआ रात को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। चलो गया कहाँ जाएगा। हम विदेश के भाई बहनों वाले वो बहुत अच्छी बात सुनाते, कोई भाई या बहन समझो छोड़ देती है ज्ञान और फिर तीन चार साल के बाद वापस आते हैं तो कहते हैं भाई तुम कहाँ थे? तो कहा आई वॉज ऑन अ हॉलीडे, हॉलीडे पर थे। तो वो अपने आप को हॉलीडे पर कहते, भाई हॉलीडे पर गए तो वापस आएंगे ना, हॉलीडे है तो थोड़ी चो वहीं रह जाएंगे, तो हॉलीडे पर थे। तो अभी वो कोई आएगा तो हम नहीं पूछेंगे कहाँ थे, ओ यू आर ऑन हॉलीडे, तो एक शुभ बोलते हॉलीडे पर थे। ये नहीं कहेंगे माया खा गई या माया ने पकड़ लिया, हॉलीडे पर थे। और छुट्टी है तो कुछ भी करो, आपके हाथ में है सारा टाइम। तो भले माया के वश भी हुए परंतु हॉलीडे। लेकिन इसलिए हम तो किसके कर्म में नहीं जाएंगे, हर एक का अपना अपना कर्म है। इसलिए मुझे क्या करना है वो मुझे देखना है। मैं ऐसा कोई कर्म न करूं, ऐसा कोई वचन न बोलूं जो मुझे ही अंदर में उसका दुख हो कि ऐसे मैंने क्यों कहा। इसलिए निरंकारी स्थिति। तो बाबा बहुत नम्र थे। किसी ने मेरे से यहाँ तक पूछा, समझो बड़ी दादी के आगे कोई ऐसी बात आती थी और किसी ने एक बहुत बड़ा कुछ गलत काम किया तो दादी जी क्या सजा देती थी, ये प्रश्न किसी ने मेरे से किया। दादी जी भी आप देखेंगे इतनी निर्माण, इतनी निर्माण, इतनी निर्माण थी। जो किसी ने दादी से ये दूसरा प्रश्न है वो उसका जवाब देती हो। तो दूसरा था, किसी ने कहा कि दादी लव और लॉ का बैलेंस तो रखना चाहिए ना, केवल लव ही लव थोड़ी रहेगा, लॉ भी तो चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो लव और लॉ का बैलेंस हम कैसे रखें? तो दादी आपको भी लव और लॉ का बैलेंस रखना चाहिए, जैसे दादी को शिक्षा दे रहे थे। पर दादी जी कहती थी नहीं, यहाँ एक परिवार है, इस परिवार में लव इज द लॉ। एक बार दादी ने ये कहा, लव इज द लॉ, लव ही लॉ है, ये लॉ अलग नहीं है। तो फिर ये प्रश्न किया कि दादी अगर किसने कोई गलती की तो आप उनको सजा नहीं देते थे? तो यहाँ पर आपको पता है क्या सजा देंगे, माना कोई ऐसी बड़ी गलती तो नहीं होगी, छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती है। तो दादी उनको कहती थी अच्छा तुम जाओ तीन महीना अपने घर में रहो, तीन महीने के बाद आना, ये तुम्हारी सजा है। और कोई हल्की होती थी तो दादी कहती थी अच्छा जाओ बाबा के कमरे में दो घंटा तपस्या करो, बाबा के कमरे में दो घंटा तपस्या करो। तो वो कहता था दादी मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। कोई बात नहीं, नाश्ता नहीं करना है, जाओ दो घंटा बाबा के कमरे में तपस्या करो। और कई बार ऐसे आते थे लोग दादी के आगे, इतना चिल्लाते थे, जोर जोर से गुस्सा करते थे। दादी को मैं देखती थी इतना शांत, इतना शांत, इतना शांत, तो मैंने जैसे नहीं देखा होगा ऐसे दादी हो जाती थी। और जब पूरा कितनी कितना बोलेगा वो व्यक्ति, तो जब एकदम पूरा होकर लेता था तो दादी कहती थी, अच्छा आपको पानी दे अब प्यास तो लगी होगी, इतना जोर से बोला तो मुख तो सूख जाता होगा ना गुस्से में, तो आपको हाँ भाई फलाने जाओ इनको पानी लेकर के आओ, पानी दो इनको। तो और जैसे ही ऐसे दादी ने कहा, बिल्कुल वो इतना शर्मिंदा हो जाता था दादी के आगे, दादी को कहता दादी जी सॉरी हाँ मैंने ये क्या कह दिया। दादी कहती कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पर दादी की स्थिति कभी नहीं ऐसे हुई कि गुस्सा आ जाए या, पर शांत हो जाती थी, ये दादी की विशेषता थी। और बाबा के आगे भी ऐसे ही था, और बाबा के आगे तो यानी इतना रिस्पेक्ट बाबा रखता था। जैसे कई बार मुरली में आता है, एक कोई बहन समझो बाबा को पत्र लिखती थी, बाबा को पत्र में सारी अपनी बढ़ाई लिखती थी, बाबा मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की, मैंने वो सेवा की, वो बड़ा चढ़ा करके भी लिखती होगी। जैसे आज बाबा ने कहा ना, वो इसने इतना अच्छा ओपिनियन लिखा बाबा, उसने ये अच्छा सुनाया, ये किया। बाबा ने कहा क्या अच्छा सुनाया, उसने ये तो बताया ही नहीं कि गीता का भगवान कौन आदि आदि। तो बहुत बढ़ाई करती थी। तो एक बहन, उसने बहुत बड़ा पत्र लिखा और सेवा समाचार। फिर वो मधुबन में आई, तो मधुबन में जब बाबा के सामने आई तो बाबा को फिर बताने लगी वही बात। अब बाबा समझ गए ये इसका अभिमान है, तो ये तो सीधा तो नहीं कहेंगे कि इतना अभिमान क्यों दिखा तुम पता है ना, तो बार बार क्यों बता रही, ऐसे नहीं कहा। बाबा ने कहा बच्ची आपने तो बहुत अच्छी सेवा की और आपने ये पत्र में लिखा था ना बच्ची। हाँ बाबा मैंने पत्र में लिखा था बाबा, ये मैंने सब लिखा था। तो बाबा उनको शांति का, बाबा जानते हैं, बस इतना ही, बाबा नोज, जानते हैं आपने क्या सेवा की, इनफ। इतना बताने की जरूरत क्या, मेरे पास टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, नहीं कई लोग कहते हैं ना, हाँ इतना जरूरत नहीं है, हो गया ना, समझ लिया ना, बार बार क्यों कहती हो। बस बच्ची बाबा ने सुन लिया, बाबा जानते हैं बच्ची बच्ची बच्ची, हर बात में हर वाक्य के पीछे बच्ची बच्ची बच्चे बच्चे बच्चे, क्योंकि बाबा तो बेहद के पिता थे, तो बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, तो कैसे बाबा की वाणी होगी आप सोचो। लेकिन जब बाबा मुरली चलाते थे तो वो तो बाबा शिव बाबा उनमें थे तो बहुत ही शक्ति होती थी। हिस्ट्री हॉल में बाबा मुरली चलाते थे तो हिस्ट्री हॉल में बाबा की जब मुरली चलती थी, मेरा भी ये सौभाग्य रहा है, मैंने यहाँ भी बाबा की मुरली सुनी, मधुबन में आई थी, और बाबा बॉम्बे में बहुत आते थे तो बॉम्बे में भी मुरली सुनाते थे, तो हम जाते थे, पहले बाबा की मुरली सुनते थे फिर स्कूल जाते थे, स्कूल पढ़ती थी मैं 10 साल की उम्र से, तो स्कूल फिर कॉलेज, तो बाबा तो हर साल आते थे। तो मुझे तो कैसे बाबा को तो हम अच्छी तरह से देखते थे, लेकिन जब बाबा की मुरली चलती थी और कब बाबा इतना बेहद की बातें करते थे, बच्चे ऐसे ये होगा ये होगा ये होगा, तो हम सोचते थे बाबा ये जो बातें कर रहे इतना स्ट्रांग कह रहे हैं, और बच्चे तो बैठे कितने, 15-20 बच्चे बैठे हैं मान लो, या 50 बैठे होंगे, 25 की पार्टी आई, माना मधुबन हाउसफुल। बाबा पत्र में लिखते थे बच्ची मधुबन हाउसफुल है, अभी और मत आओ, क्योंकि इतने थोड़े से तो मकान थे यहाँ, तो ये तो सब बाद में बने है ना, ये सब जो बाहर है पांडव भवन के तो कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ पांडव भवन के अंदर ही था जो कुछ भी था। तो बस बाबा मधुबन माना हाउसफुल हो गया, तो इतने थोड़े भी होते थे लेकिन बाबा की मुरली जबरदस्त चलती थी। तो फिर बाबा से पूछते थे बाबा आपने तो क्या जबरदस्त मुरली चलाई, पर जो बैठे हुए थे वो तो 50 भी नहीं होंगे मानो। तो बाबा क्या कहते थे, जैसे आप अब आपके सामने बैठे तो हल्के रूप से बोल रहे, माइक्रोफोन तो है उसमें, बाबा माइक्रोफोन भी यूज नहीं करते थे। बाबा कहते थे माइक्रोफोन पर थोड़ी पढ़ाई होती है, माइक्रोफोन पर पढ़ाई नहीं होती है, कोई बाबा की मुरली पर माइक्रोफोन नहीं है। इशू दादी लिखती थी मुरली, उनकी अपनी शॉर्ट हैंड होती थी, वो उस शॉर्ट हैंड से बाबा की मुरली लिखती थी, जो आज हम मुरली पढ़ रहे हैं ना ये उसी समय का है। तो फिर बाबा कहते थे बच्ची मैं इनको देख के थोड़ी मुरली चला रहा हूँ, इनको देख के मुरली नहीं चला रहा हूँ, तो किसको देख के मुरली चला रहे हैं। बाबा कहते थे जो भविष्य में आने वाले बच्चे हैं, बच्चे बहुत आएंगे भविष्य में, बहुत आएंगे, उन बच्चों को भी बाबा देखकर मुरली चलाते हैं। तो आप सोचो क्या बाबा की मुरली होगी, कहा 50 के आगे बोलना, कहा 1000 के आगे बोलना, कहा 10000 के आगे बोलना, 1,00,000 के आगे बोलना, फर्क तो पड़ता है ना। लेकिन बाबा 50 के आगे भी इतना खड़केदार बोलते थे, और वैसे देखो बिल्कुल न्यारे प्यारे, इतने हल्के, इतना सॉफ्ट स्पोकन, जो बात होती जो, ये बाबा की शक्ति थी। तो उतनी ही निरअहंकारी स्थिति और उतनी ही निर्विकारी, इतना भोलापन बाबा में था जो बात मत पूछो। एक हंसी की बात आपको सुनाती हूँ। हाँ, मनोहर इंदिरा दादी थी ना हमारी, आप जानते, पुराने तो जानते, वो बाबा के साथ बहुत हंसी करती थी। बड़ी दीदी भी बाबा के साथ बहुत हंसी करती थी, बाबा से बहुत लाइट, जैसे फ्रेंडशिप के रूप से, बाबा तो बाबा थे लेकिन एक फ्रेंडली नेचर भी थी दोनों की, हल्के थे बहुत। तो मनोहर दादी बताती थी जी, हाँ मनोहर दादी बाबा की वो हिस्ट्री बताती थी, हम भी उनसे ही सीखे हैं बहुत कुछ। दादी के साथ ही रहते थे मधुबन में, तो दादी ने एक बार हिस्ट्री सुनाई कि हमने बाबा के साथ खेल किया, क्योंकि किसी ने उसके साथ खेल किया, अब उस खेल में अभी वो भी हार गई, तो इसलिए उसने सोचा मैं बाबा के साथ खेल करूं। तो उसने क्या किया, एक अठन्नी थी, 50 पैसा अठन्नी, वो कहा बाबा मैं आपके यहाँ पर रखती हूँ, और बाबा ये है ना यहाँ जोर से लगाती हूँ, और आप ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें, अगर आप में गुस्सा नहीं है ना तो बाबा वो गिर जाएगा, गुस्सा नहीं है, और अगर गुस्सा होगा तो नहीं गिरेगा। तो ऐसे ऐसे किया बाबा ने तो गिर गई। अब दूसरी बार बाबा ने, फिर इसने कहा बाबा अभी एक बार और, तो बाबा तो उसने क्या किया, खूब जोर से लगाया लेकिन फिर निकाल दिया। अब निकाल दिया तो बाबा को तो पता ही नहीं चला कि लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो बाबा ऐसे ऐसे करे पर निकला ही नहीं, वो नीचे ही नहीं आया। तो कहा बाबा इसका मतलब आपने घुसा है। तो बच्ची क्यों नहीं निकल रहा है, बच्ची क्यों नहीं निकल रहा है। तो फिर देखा अरे वो तो है ही नहीं। तो कहा बच्ची आपने पहले क्यों नहीं बताया कि निकाल दिया है। यानी अब इनोसेंस, बाबा की इनोसेंस, कहां दुनिया की बातें, कहां इतना विशाल ज्ञान और इतना इनोसेंट, ये बाबा की इनोसेंस थी। आप सोचिए और आप इसको समझ सकते हैं ना, कितनी इनोसेंस। तो कैसे बाबा, जहाँ शक्ति का सवाल है, बाबा खड़े होते थे तो बस एक दृष्टि बाबा ने दी, सब एकदम स्टैंड स्टिल हो जाते थे, अटेंशन जैसे होता है ना, सब एकदम खड़े हो गए, बाबा की दृष्टि मिली। तो ये थी बाबा की निर्विकारी स्थिति, न काम न क्रोध न लोभ न मोह न अहंकार। बाबा को कितनी चीजें देते थे, बाबा किसी न किसी को दे देते थे, लेकिन फिर वो कहने आता बाबा आपने फलाने को दिया, हमने बाबा आपको पहनने के लिए दिया, तो बाबा कहते बच्ची आपने तो बाबा को दे दिया, अभी बाबा किसको भी दे रहे, हमको लगता था किसी ने हमको कोई चीज दी, ये आपको पहननी है, और कल मैंने किसी और को दे दिया और उसने देखा कि मैंने जो चीज इनको दी वो दूसरा पहन रहा है, तो वो मेरे से पूछेंगे भाई आपने इनको क्यों दी, हम तो भाई किसको भी दे ना, आपने हमको दी माना आप न्यारे हो जाओ, आप न्यारे हो जाओ, आप थोड़ी सोचेंगे मैंने दी है माना इनको ही पहननी है, किसको भी दे रहे। तो बाबा उनको कहते थे बच्ची आपने तो बाबा को दी, अब बाबा जाने, बाबा का काम जाने। हाँ, इसलिए संकल्प ही नहीं करना चाहिए हमने तो फलाने को दी, हमने ये दी, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आपने दे दी, आपने अपना पुण्य कमा लिया, अपना भाग्य कमा लिया, अब वो क्या करता है वो फिर उसका कर्म बन जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपने अपना भाग्य बना लिया क्योंकि आपने बाबा को बुद्धि में रख करके दिया। अब सेवाएं तो बहुत है, कोई एक व्यक्ति थोड़ी कोई वो पहनेगा खाएगा, एक व्यक्ति की तो बात ही नहीं, तो बड़ा परिवार है, भगवान का बड़ा यज्ञ है। तो इसको ऐसे समझकर हम भी उसी स्थिति में रहते हैं। तो ब्रह्मा बाबा से, दादियों से हमने जो सीखा, सचमुच हम तो अनुभव करते वही हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। अभी आप सबने तो चलो इतना न भी पालना लियो, लेकिन अभी समय हमें सावधान कर रहा है। समय की पहचान बाबा हमें देते हैं कि हमें अपने जीवन को कैसा बनाना है। फिर भी आप बहुत भाग्यशाली हो, बाबा के बच्चे बने, बाबा को पहचाना, बाबा से योग लगा रहे हैं, बाबा से अधिकार ले रहे हैं, तो जरूर बहुत बहुत आप भाग्यशाली आत्माएं हो। सदा इस भाग्य को सिमरन करते रहना, बाबा के भी गुण गाते रहना, अपने भाग्य को भी का भी गुण गाते रहना। ठीक है, अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।